ओम शांति। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के आदरणीय रामलोचन भाई जी। आदरणीय रामलोचन भाई जी ने 1972 में ज्ञान प्राप्त किया और उसी साल से अपने जीवन को ईश्वर सेवा में समर्पित किया। वर्तमान समय शांतिवन के वीआईपी किचन की जिम्मेवारी आप सुचारू रूप से निभा रहे हैं। योग के विषय में आप विशेष रुचि रखते हैं और इसलिए देश के भिन्न भिन्न स्थानों से आपको योग बट्टियों के लिए निमंत्रण मिलते ही रहते हैं। तो आइए हम खास इस पुरुषार्थ की विधि का स्पष्टीकरण प्राप्त करें, किस तरह हम दुआएं दे और दुआएं ले। आदरणीय रामलोचन भाई जी।
ओम शांति। हम सब आत्माएं परमात्मा बाप के आज्ञाकारी सपूत बच्चे हैं। हम सब बच्चों ने लक्ष्य लिया है जो बाबा की श्रीमत है, उस श्रीमत अनुसार स्वयं का पुरुषार्थ बढ़ाकर बाप समान अवश्य बनेंगे। अर्थात जो बाप हम बच्चों को श्रीमत दे रहा है उसकी पालना अवश्य करेंगे। तो बाप दादा, हम आप सबको श्रीमत मुरली के द्वारा दे रहा है, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली। वर्तमान समय जो आवश्यकता है उस आवश्यकता अनुसार बाबा मुरली चला रहा है। जैसे लौकिक दुनिया में जब बच्चों का पेपर नजदीक आता है तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे दी जाती है, जाकर घर में पढ़ाई पढ़ो और जो प्रश्न समझ में ना आए टीचर से पूछ के जाना, बाकी पूरी पढ़ाई रिवाइज करो। यहां पर भी पेपर का समय नजदीक है। लौकिक दुनिया में तो टीचर स्टूडेंट को कहता है पूछना आकर, लेकिन अपना टीचर तो त्रिकालदर्शी है, वो जानता है कि वर्तमान समय स्टूडेंट को किस चीज की आवश्यकता है, बच्चे किस बात में कमजोर हैं, तो उस बात के अनुसार बाबा मुरली चला रहा है। तो वर्तमान समय बाबा की मुरली जो पिछली चली, दो बातों पर बाबा ने ध्यान खिंचवाया। एक तो श्रेष्ठ वृत्ति से वाइब्रेशंस और वाइब्रेशन से वातावरण और वातावरण के द्वारा सेवा, और दूसरा दुआएं दो दुआएं लो। तो दोनों में इजी है, दुआएं देना और लेना, क्योंकि मनसा सेवा के लिए मनसा बहुत पावरफुल चाहिए, क्लीन क्लियर चाहिए, जरा सा भी कीचड़ा ना हो, तब आपकी वाइब्रेशंस काम कर सकेगा। लेकिन दुआओं में अगर थोड़ी बहुत कमी भी है तो भी चल जाएगा। लेकिन दुआओं को बाबा ने बहुत ऊंचा स्थान दिया है। दुआओं के लिए तो बाबा ने इतनी बड़ी बात कह दी कि अगर आपके पास कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेष गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर आप दुआएं देते रहो और लेते रहो तो भी पास हो जाओगे। इतनी बड़ी बात दुआओं के लिए बाप दादा ने बताई है। लेकिन बच्चों के दिल से सदा दुआएं निकलती नहीं है और ना ले पाते हैं, तो मेरे समझ से दो कारण होगा जिससे ना सदा दुआएं दे पाते हैं ना ले पाते हैं। उन दोनों कारणों में पहला कारण है कि दुआ देने और लेने से क्या क्या फायदा है वो स्पष्ट नहीं है, क्योंकि फायदा अथवा प्राप्ति पुरुषार्थ अवश्य कराती है। जहां प्राप्ति होती है वहां पुरुषार्थ सहज होता है। और दूसरी बात है कि दुआ कैसे दें, किसको दें और किस विधि से दुआ लें, ये आता नहीं है। किसको दें, कैसे दें, किस विधि से दें और किस विधि से लें, यह स्पष्ट न होने के कारण दुआओं का खाता बढ़ नहीं रहा है। सदा दुआएं दे या ले नहीं पा रहे। दुआ देने वाली आत्मा को वर्तमान समय कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा, जो आत्मा दुआ देती है अथवा लेती है, सबसे बड़ा पहला फायदा भगवान की आज्ञा की पालना करने के कारण भगवान के आशीर्वाद का पात्र बन जाता है। भगवान से आशीर्वाद उसको मिलने लगती है। दूसरा फायदा, दुआ देने वाली आत्मा को स्नेह ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाता है। स्नेह मिलने के कारण वो सरल चित बन जाता है और सरल चित वाले का योग सहज लगा रहता है। मन में डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तीसरी बात, दुआ देने से आपका हिसाब किताब खत्म होता है, और जितना हिसाब किताब खत्म होता जाता है उतना आत्मा हल्की होने के कारण ऊंची स्थिति का बाप के साथ साथ वतन में बैठने का या विश्व सेवा करने का अनुभव बढ़ने लगता है। चौथी बात, जो इस समय जितनी दुआएं देता है इस प्रकार से ही द्वापर युग में आप मूर्तियों के द्वारा भगत दुआएं लेंगे। अगर अभी आप नहीं देंगे तो भगत फिर कैसे आप मूर्ति से दुआ ले पाएंगे? दुआ के लिए तो बाबा ने बताया था सबसे तीखा राकेट है। जैसे वो राकेट थोड़े समय में कहीं पहुंचकर अपना काम अवश्य करता है, ऐसे ये दुआओं का राकेट थोड़े समय में ही अपना काम अवश्य करता है। ये दुआओं का खाता बहुत महान खाता है, लेकिन बच्चे दुआ दे नहीं पाते। अब प्रश्न है किसको दुआ दें और किस प्रकार से दुआ दें। दुआ हमें 5 को देना है और 5 से ही लेना है। पहला है बाप को शुक्रिया अदा करना है और बाबा से आशीर्वाद अथवा दुआ लेना है। दूसरा है स्वयं को दुआ देनी है, स्वयं से दुआ लेनी है। तीसरा है प्रकृति को दुआ देनी है, प्रकृति से दुआ लेनी है। चौथा है ब्राह्मण आत्माओं को दुआ देनी है, ब्राह्मण आत्माओं से दुआ लेनी है। और पांचवा है अन्य जो भी आत्माएं हैं उन सभी आत्माओं को दुआ देनी है और उनसे दुआ लेनी है। पहली बात है बाप को शुक्रिया अदा करनी है और बाबा से दुआ लेनी है। ब्राह्मण आत्माओं के दिल से बाबा के प्रति सदा शुक्रिया कब निकलेगी? आप अपने दिल से पूछो कि बाबा के लिए मुझे आत्मा से शुक्रिया सदा निकलती है या नहीं। अगर शुक्रिया नहीं निकल रही है तो इसका कारण है कि बाप दादा के द्वारा जो आपका जीवन इतना महान बना है, इतना ऊंच बना है, उस महानता का, ऊंचाई का अनुभव नहीं हो रहा है कि भगवान ने हमें कितना ऊंचा बना दिया है। अगर आपको अपनी महानता का अनुभव हो तो सदा दिल से यही निकलेगा, शुक्रिया बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, क्या थे और कितना ऊंचा हमको बना दिया। ये महानता का अनुभव न होने का कारण दो है। आप प्रैक्टिकल में महान हो लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, उसका कारण दो है। एक कारण है कि जब तक आप अपने को आत्मत्व स्वरूप में नहीं स्थित कर पाएंगे, तब तक बाप के द्वारा प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होगी। चलो बाबा के पास।
प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
शांति। पहला कारण था कि आत्मक स्थिति में स्थित न होने के कारण भगवान की प्रॉपर्टी का अनुभव नहीं होता है, प्राप्तियां नहीं होती है। जैसे लौकिक दुनिया में अगर कोई व्यक्ति दूसरे को पिताजी पिताजी कहकर पुकारे तो क्या पिताजी कहने से वो अपनी प्रॉपर्टी उसको दे देगा? नहीं मिलेगी ना। ऐसे अगर हम देह भान में रहकर बाबा बाबा करते हैं या बाबा शांति का सागर है, मैं मास्टर शांति का सागर हूं, चाहे यही संकल्प करते हैं, लेकिन बाबा तो आपके देह का बाबा है ही नहीं, तो देह भान में रहकर अगर बाबा बाबा कहा, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सिर्फ भावना का फल थोड़ा मिल जाएगा, बाकी प्रैक्टिकल में प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए महानता का अनुभव नहीं होता है। दूसरा कारण है कि बाबा ने जो हम आप सब आत्माओं को ऊंचते ऊंच लक्ष्य दिया है, उस लक्ष्य में और वर्तमान समय की स्थिति में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। उस ऊंची मंजिल से थोड़ा दूर स्वयं को अनुभव करते हैं, इसलिए अपनी महानता का अनुभव नहीं होता है। लेकिन प्रैक्टिकल में देखा जाए तो आप इतने महान बन चुके हैं, चाहे गांव के भोले भाले एक अक्षर भी पढ़े हुए नहीं है, वो भी भगवान के बनते ही इतने महान बन चुके हैं, जो उनकी महानता के कंट्रास्ट में वर्तमान समय कोई है ही नहीं। इतने महान हो जैसे आजकल की दुनिया में महानता किसको दी गई है, या तो सन्यासी को, या तो राजनेताओं को, या तो साइंटिस्ट को, और या तो मूर्ति को, इन्हीं को महान माना गया है। और इन सब से आप महान बन चुके हो। उदाहरण के रूप से आप सन्यासी को देखो, पहले आपके घर में सन्यासी आता तो मस्तक झुकाते, अब सन्यासी तो क्या, शंकराचार्य ही आ जाए तो झुकेंगे नहीं, झुकेंगे ना, तो सिद्ध है उनसे बड़े हो तब तो नहीं झुक रहे हो। और बड़े ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल धारणा के आधार से हो। सन्यासी के आगे मस्तक क्यों झुकाते थे, दो बातें थी, एक पवित्रता और दूसरा त्याग। और आपकी पवित्रता और उनकी पवित्रता में कितना अंतर है, उनकी पवित्रता शास्त्र मत या गुरु मत के आधार पर है, और आप सबकी पवित्रता परम पवित्र परमात्मा के मत पर है। कितनी ऊंची पवित्रता है, उनका त्याग घर बार छोड़ा, और आपका त्याग ये देह भी मेरी नहीं है, ये भी भगवान की है, ट्रस्टी होकर संभाल रहे हैं, कितना बड़ा त्याग है। इसलिए सन्यासी से महान हो। साइंटिस्ट को देखो, साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं 5 तत्वों की, इससे पार का रिसर्च वो नहीं कर सकते हैं। और आपका ज्ञान इन 5 तत्वों से पार का है, जहां साइंटिस्ट स्वप्न में भी नहीं जा सकते हैं, वहां आप पहुंचते हो। सूर्य तारा गण के पार, ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियों के भी पार, परम धाम जहां सर्व आत्माएं और आत्माओं का पिता रहता है, आप वहां सेकंड में पहुंचते हो, जहां साइंटिस्ट कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। सोचो कितना उनसे महान हो, जो वो सोच भी नहीं सकते हैं, और आप वहां पहुंचते हो, जाते हो, आपका घर है। राजनेताओं में देखो, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति आपको कहे कि आप ये पद ले लो और भगवान का हाथ छोड़ दो, तो आप छोड़ोगे? नहीं ना? तो सिद्ध है कि उनसे महान हो ना, तब तो नहीं छोड़ रहे हो, क्योंकि पता है वो तो कांटों का सिंहासन है और हम आत्माओं को तो भगवान का दिल तख्त मिला हुआ है। इससे बड़ा तख्त तो कोई होता ही नहीं है, इसलिए नहीं उसको ले रहे हो। तो जरूर उनसे महान हो। मूर्ति को देखो, इस ज्ञान के पहले किसी मूर्ति को देखते तो मस्तक झुकाते, अब मूर्ति को देखकर मस्तक झुकेगा? नहीं। इससे सिद्ध है कि उस मूर्ति से महान हो, तब तो मस्तक नहीं झुका रहे हो। प्रैक्टिकल में महान कर्तव्य के आधार से हो। मूर्ति के आगे मस्तक क्यों झुकाते हैं? दो बात के कारण। एक तो मूर्ति देती है, दाता है, और दूसरी मूर्ति की विशेषता है दिव्य है, अलौकिक है। आप अपना देखो, मूर्ति की जगह पर कोई जाएगा तब मूर्ति से प्राप्ति होगी, और आप एक स्थान पर बैठे हुए पूरे विश्व में वाइब्रेशंस फैला रहे। वो तो मूर्ति के आगे कोई जाएगा तो देगी, आपके पास कोई आए न आए, पूरे विश्व को वाइब्रेशंस दे रहे हो। तो उससे बड़े दाता तो आप हुए। और मूर्ति की दूसरी विशेषता दिव्यता है। दिव्यता शब्दों में ही आ जाती है। देखो, चाहे किसी देवी की मूर्ति हो या देवता की मूर्ति हो, दोनों को मूर्ति ही कहते हैं। ऐसे नहीं कि देवताओं की मूर्ति को मूर्ता कहेंगे और देवी की मूर्ति को मूर्ति कहेंगे, नहीं, दोनों के ही मूर्ति को मूर्ति कहेंगे। इससे सिद्ध है कि मूर्ति में देह भान नहीं है, दिव्यता है, आत्मक स्थिति है, रूहानी स्थिति है, देह भान नहीं। तो जो चीज मूर्ति में नहीं है वो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और मूर्ति से एक कदम आगे ही है। मूर्ति तो सिर्फ देही अभिमानी ही है, लेकिन आप सब बच्चे तो परमात्म अभिमानी भी हो। देही अभिमानी और परमात्म अभिमानी तो मूर्ति से भी बहुत ऊंचे हो। तो अगर आप यही सोचते रहो कि भगवान ने हमें कितना ऊंचा बना दिया है, तो आपके दिल से भगवान के लिए सदा शुक्रिया निकलती रहेगी। और जितना बाबा के लिए शुक्रिया निकलेगी, उतना दिल का प्यार और रिगार्ड भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा। और यही प्यार रिगार्ड निरंतर योगी सहज बना देगा। तो बाप को शुक्रिया अदा करो और बाप से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेने की विधि क्या है? बाप आशीर्वाद सदा किसको देगा? किसको देगा? आज की साकार मुरली में भी था। आशीर्वाद उसे मिलती है जो बाप की आज्ञा पर चलता है, श्रीमत पर चलता है। आप अपने लौकिक घर में देखो, आपके दो चार बच्चे हों, एक बच्चा जो बहुत धन कमाता है, बहुत तेज बुद्धि वाला है, लेकिन आपका कहना नहीं मानता है, और एक बच्चा जो बुद्धि कम है, धन भी कम कमाता है, लेकिन आपका पूरा कहना मानता है, तो दोनों में किसके प्रति आपकी दिल की दुआएं निकलेंगी? वही जो आज्ञाकारी है, सदा उसके लिए दिल से यही निकलेगा कि भगवान इसकी भी तेज बुद्धि हो जाए, भगवान ये भी कमाने लगे। सदा उसके लिए दिल की दुआ निकलेगी। ऐसे जितना हम भगवान के आज्ञाकारी बनेंगे, उतना भगवान से आशीर्वाद स्वतः मिलेगी। और वो भगवान की आशीर्वाद बच्चे को नंबर वन में ले जाएगी। विशेषता फल नहीं है, लेकिन आज्ञाकारी बनकर देखो, सारी विशेषताएं भगवान भर देगा। दूसरी बात है, स्वयं को दुआ दो और स्वयं से दुआ लो। स्वयं अर्थात आत्मा, आत्मा को दुआ दो और आत्मा से दुआ लो। आत्मा को दुआ देने की विधि है, जितना आप स्वयं में संतुष्ट होंगे, भरपूरता का अनुभव करेंगे, उतना स्वयं स्वयं के प्रति दुआएं निकलती रहेंगी। किस प्रकार से? जितना भरपूर होंगे, संतुष्ट होंगे, उतना दिल से निकलेगा, वाह रे मैं, वाह मेरा पार्ट, वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा वाह। ये जितना वाह वाह निकलता है, इसको कहा जाता है स्वयं को दुआ देना। जितना स्वयं के लिए वाह मेरा भाग्य, वाह ड्रामा वाह, वाह वाह जितना निकलता है वो तो निकलेगा तभी जब स्वयं संतुष्ट होंगे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे, तब दिल से वाह वाह निकलेगा। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने की सहज विधि है कि बाप से सर्व संबंध जोड़, सर्व प्राप्तियां बाबा से कर सकते हो। संबंध के आधार से प्राप्ति है, जिस संबंध से जो चाहिए वो ले सकते हो। बाप सर्व संबंधी है। पिछली मुरली में बाबा ने कहा था, बाप आपका संबंधी है, उसे यूज करो, प्रयोग में लाओ। सोचो, जब भगवान आपका बाप है तो बाप का बच्चों के प्रति क्या फर्ज है? क्या फर्ज है? बच्चे को सुखी रखना, ये बाप का फर्ज है। अगर आप बाबा के आज्ञाकारी बनकर रहो तो कोई भी चीज की आवश्यकता है तो स्नेह के आधार से, स्नेह के अधिकार से बाप से ले सकते हो। मांगने से नहीं मिलेगा, स्नेह के अधिकार से। और स्नेह का अधिकार का आधार है आज्ञाकारी बनकर रहना। स्नेह के अधिकार से आप भगवान से कह सकते हो, अगर मेरी इच्छा नहीं पूरी करनी थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? पैदा किया तो पालो। लेकिन ये वही कह सकता है जिसका भगवान से स्नेह का अधिकार होगा, और स्नेह के अधिकार के लिए आज्ञाकारी बनना जरूरी। भगवान से सब कुछ लेकर संपन्न बनो, तृप्त बनो, इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तब वाह रे मैं निकलेगा। इसको कहा जाता है स्वयं को दुआ देना, और स्वयं से दुआ लेने की विधि है जितना स्वयं को ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में जितना स्वयं को पक्का रखेंगे उतना स्वयं से दुआ मिलती रहेगी। अगर मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी नियम को तोड़ा तो फिर मिलना बंद हो जाएगा, फिर दुआ नहीं मिलेगी, पश्चाताप मिलेगा। तो स्वयं से दुआ लेने की विधि, नियम मर्यादाओं में पक्के रहो। स्वयं में दो चीज है, आत्मा और शरीर। इस शरीर को भी दुआ दो और इस शरीर से भी दुआ लो। कई ब्राह्मण आत्माएं इस शरीर को दुआ नहीं देती, बददुआ देती है। किस प्रकार से? कई जब बाबा के ज्ञान में आते हैं तो कुछ पास्ट कर्म के फल के कारण कुछ परेशानी आना शुरू हो जाती, बीमार पड़ जाते हैं, या कुछ कारण ऐसे बनता है तो क्या कहते हैं कि जब से भगवान के बने तब से पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब जब बुढ़े हो गए तब हमें भगवान मिला, पहले हमें भगवान क्यों नहीं मिला था? अब इस बुढ़े शरीर से तो हम कुछ सेवा भी नहीं कर सकते हैं, अभी तो शरीर बीमार रहता है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या है। ऐसे संकल्प करना अर्थात इसको बद दुआ देना, ऐसा संकल्प कभी नहीं करो, इसको दुआ दो। किस प्रकार से? इस शरीर को दुआ देने की विधि है, बाबा ने उदाहरण देकर बताया था कि जैसे घोड़ा है जो तांगा खींचता है या वैसे ही है, अगर उसको आप बार बार चाबुक मारते रहो तो थोड़ी देर में वो घोड़ा तंग करना शुरू कर देगा, परेशान करेगा। लेकिन अगर घोड़े को प्यार से सहलाओ, उसका पीठ थपथपाओ, उसे प्यार करते रहो, तो जब तक घोड़े के शरीर में दम है आपका साथ देता रहेगा। उसी प्रकार यह शरीर चाहे बुढ़ा है, चाहे बीमार है, चाहे कैसा भी है, सदा इसको दुआएं दो। किस प्रकार से? कि वाह मेरा बुढ़ा शरीर, वाह, शाबाश बुढ़ा शरीर, शाबाश। सोचो कि इस बुढ़े शरीर से भगवान मिला है, थोड़ा सोचो तो सही कि इस बुढ़े शरीर से भगवान मिला है। जब शरीर जवान था तब तो भगवान मिला ही नहीं, तो वो जवानी किस काम की? बलिहारी इस बुढ़े शरीर की जो भगवान को प्राप्त कर लिया। शाबाश बुढ़ा शरीर, शाबाश। जो इस प्रकार से इसको आप सोचो, यह आंखें हैं कम देखती हैं, चश्मा लगाना पड़ता है, इस चश्मे वाली आंख की कितनी बड़ी बलिहारी है। सोचो कि इस चश्मे वाली आंख ने भगवान के रथ को देखा, भगवान के अवतरण को देखा, भगवान कैसे खाता है वो इस आंखों ने देखा, भगवान कैसे बाणी चलाता है इस आंखों ने देखा। वाह चश्मे वाली आंख, वाह, इतना महान चीज देखा। सोचो कभी, ये कान है कम सुनता है, लेकिन इस कम सुनने वाले कान की बलिहारी तो देखो कि कम सुनने वाला कान डायरेक्ट परमात्मा के महावाक्य सुनता है। वाह कम सुनने वाला कान, वाह। एक एक कर्म इंद्री देखो कितनी महान है। आप ऐसे इसको शाबाश शाबाश एक एक अंग को देते रहो, देखो आपकी आधी बीमारी भाग जाएगी। करके देखो, मन का प्रभाव शरीर पर बहुत पड़ता है। जो मन सोचता है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। इसको आप थैंक्स देते रहो, शाबाश शाबाश करते रहो, बहुत आपको सहयोग देगा। तो इस शरीर को दुआ देते रहो, बद दुआ नहीं दो। सदा पॉजिटिव सोचो। एक उदाहरण पॉजिटिव का बताता हूं। साकार बाबा के समय बाबा एक बार बॉम्बे गया था, तो एक माता थी, उसकी नई नई शादी ही हुई थी लेकिन पति मर गया था, तो बहुत दुखी थी। लेकिन ज्ञान के संपर्क में आई थी, तो जब बाबा बॉम्बे गया तो वो माता बाबा से मिलने आई और बाबा को अपनी दुख की बात सुनाई और कहा, बाबा अब इस कलप में तो मैं रो धो करके कैसे भी अपने दुख को भुलाऊंगी, लेकिन बाबा क्या हर कलप ऐसे ही पति मरता रहेगा और हर कलप हम ऐसे विधवा होती रहूंगी क्या? ऐसे ही हमें हर कलप दुख उठाना पड़ेगा? ऐसे कहकर रोने लगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम ऐसा क्यों नहीं समझती हो कि हर कलप यह पति मरेगा और हर कलप हमें ही पतियों का पति परमात्मा मिलेगा? बच्ची इससे बड़ा भाग्य और क्या है? तो देखो माता दुख से सुख में आ गई। तो हर बात पॉजिटिव लो, नेगेटिव नहीं। तो इसको भी दुआ दो और इससे भी दुआ लो। इससे दुआ लेने की विधि है कि इस शरीर के द्वारा यज्ञ की कर्मणा सेवा अवश्य करो। कर्मणा सेवा ही इससे दुआ दिलाएगी। आप करके देखो, कोई भी थोड़ा बीमार हो और सेंटर पर जाकर सेवा करके देखो, आपकी बीमारी भाग जाती या नहीं? कैसे चली जाएगी? जाने का कारण है आपने सेवा किया और बीमारी का जो हिसाब किताब था सेवा करने से खत्म हो गया और आप ठीक हो जाएंगे। आप सोचो, चाहे सेंटर पर या यहां, मान लो आप क्लासरूम में झाड़ू लगाते हो, थोड़ा सोचो तो कि किस स्थान का झाड़ू लगा रहे हैं। जिस स्थान पर बैठकर भगवान के डायरेक्ट महावाक्य सुनाए जाते हैं, जिस स्थान को भगवान ने स्वयं चुना है, जो स्थान ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहलाता है, जिस स्थान से देवता बनते हैं, कितने ऊंचे स्थान की हम सफाई कर रहे हैं, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य जो हमको सेवा का चांस मिला है। ये साधारण भाग्य नहीं है, ये सेवा का चांस मिलना बहुत बड़ा भाग्य है। आप सोचो, बर्तन मांज रहे हो, थोड़ा सोचो तो कौन सा बर्तन साफ कर रहे हैं। जिस बर्तन में ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा के लिए भोग बना है, जिस बर्तन का बना हुआ भोग स्वयं परमात्मा ने स्वीकार किया है, उस बर्तन की हम सफाई कर रहे हैं, वाह मेरा भाग्य, कितनी ऊंची बात है। तो जितना इस शरीर से आप कर्मणा सेवा में लगाएंगे, उतना यह शरीर को ऑटोमेटिक इससे दुआ मिलती जाएगी और ये शरीर भी काफी आपको सहयोग देने लगेगा। ये मत सोचो कि शरीर बीमार है, बीमार है दवा दो लेकिन सेवा अवश्य करो। ये नहीं सोचो हम ऑफिसर हैं, धनवान हैं, बुढ़े हैं, ये हैं वो नहीं, ये देहभान की बात है। अगर ऐसे सोचोगे तो अपनी किस्मत में कमी कर दोगे। भगवान के घर की सेवा है, जितना ये सेवा करोगे उतना भाग्य बनता जाएगा। करो देखो, प्रजापिता ब्रह्मा, मम्मा, दादियां, इन्होंने यज्ञ की क्या नहीं सेवा की है, कौन सा ऐसा काम बाकी जो नहीं किया है, उसके आगे हम आप सब क्या हैं? दादियां, प्रजापिता ब्रह्मा स्वयं गोबर के उपले बनाया है, सिखाता था, क्या नहीं किया है, यज्ञ की सेवा थी, तब आज इतने ऊंचे जगह पर हैं, तब आज उनका इतना शरीर काम किया, इतने समय से सेवा दे रहा है शरीर। तो यज्ञ की सेवा करो, इसको दुआ दो, दुआ लो। अगर बीमार पड़े हो, कुछ नहीं कर सकते हो, तो भी अगर 5 मिनट भी बीमारी में शिव बाबा को याद किया तो बीमार वाली आत्मा को भगवान की याद ज्यादा याद आती है, आती है ना? तो अगर ज्यादा याद आई तो इससे बड़ा काम और क्या है, इससे बड़ी बात और क्या है। योग लगा रहे, लगता ही नहीं है, और उस समय ज्यादा याद आ रहा है तो बीमारी अच्छी हुई ना? सोचो, इसलिए हर बात से पॉजिटिव लो, सदा दुआएं दो और दुआएं लो, तो दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा और आत्मा संपन्न बनकर बाबा के साथ घर चलेगी। अच्छा, ओम शांति।